Thanks for joining us here at AG Kolkata. We are the church with the open arms and we serve in the city of joy, Kolkata. It is our desire to reach out to those in need and to be instruments of effective change in a hurting world. If you like to learn more about us, you can simply go to www.agkolkata.org. We hope that you'll enjoy today's message.
Ask this question: when did you ever use the word impossible?
मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ. आपने ये शब्द असंभव कब इस्तेमाल किया है?
The word impossible defines what we think can never happen.
असंभव का मतलब होता है जो चीजें हम सोचते हैं कभी नहीं हो सकते.
Humanly or even God.
मनुष्य के द्वारा या फिर परमेश्वर के द्वारा भी.
And if you study history, there are people who have made this quotes and said, you know what, this is impossible.
और अगर आप इतिहास में झांक के देखें तो ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने कुछ कहावत कही है कि ये चीजें असंभव है.
But history has proved it otherwise.
लेकिन इतिहास ने कुछ और ही साबित किया.
So I'm going to tell a few quotations of famous people and this is what they said.
मैं कुछ मशहूर लोगों की कहावतें आपको बताने वाला हूँ जो उन्होंने कहा है.
1876, someone said, British Post Office, he said, the Americans have the need of the telephone, but we do not. We have plenty of messenger boys.
1876 में किसी ने कहा कि Americans को telephone की जरूरत है, हमें तो नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे दूत हैं.
1889, Thomas Edison, this is what he said, fooling around with alternating current, AC is just a waste of time. Nobody will use it ever.
वैज्ञानिक थॉमस एडिसन ने 1889 में कहा कि एसी करंट के साथ खिलवाड़ करना तो बस टाइम बर्बाद करने के लायक है क्योंकि कोई उसे इस्तेमाल कभी नहीं करेगा.
1903, a man said, the horse is here to stay, but the automobile is only a novelty, a fad.
1903 में किसी ने कहा कि घोड़े तो हमेशा रहेंगे लेकिन गाड़ी जो है वो सिर्फ अमीर और नई चीज है और वो सिर्फ फैशन के लिए है.
Imagine we are still riding on horses to church.
सोचिए अभी भी हम घोड़े पे सवार करके चर्च आते हैं.
1946, guy said, television won't be able to hold on to any market it captures after the first 6 months. People will soon get tired of staring at a plywood box every night.
1946 में किसी ने कहा कि टेलीविजन की जो लोग देखने वाले होंगे वो 6 महीने बाद बोर हो जाएंगे क्योंकि हर रात को उस डब्बे को देखना किसी को पसंद नहीं आएगा.
Wow, aren't these impossible statements which has proved otherwise? 1961, there is practically no chance communication space satellites will be used to provide better telephone, telegraph, television, radio service inside the United States.
1961 में कहा था किसी ने कि कोई भी चांस नहीं है कि जो स्पेस में जाने वाले सैटेलाइट्स होते हैं उनसे कुछ भी टेलीफोन या टेलीग्राफ टीवी या रेडियो से कुछ बेहतर हो सकता है यूएसए में.
2006, just 12 years ago, listen to the statement made by New York Times, a guy, he said, everyone is always asking me when Apple, iPhone Apple, will come out with a cell phone. My answer is probably never.
2006 में बस 12 साल पहले किसी ने कहा कि सब मुझसे पूछते हैं कि एप्पल का नया मोबाइल फोन कब आएगा. मेरा जवाब है शायद कभी नहीं.
Just 1 year later the iPhone came out, 2007.
एक साल बाद ही आईफोन आ गया 2007 में.
I am also reminded of 1914.
मुझे 1914 भी याद आता है. 1914.
The largest ship ever to be at sea.
दुनिया का सबसे बड़ा जो जहाज था तब का जो समुद्र में चल रहा था.
The captain pompously stated at the start of this historic fatal journey.
जो कैप्टन था उस जहाज का वो बहुत दिखावे के साथ घमंड के साथ उसने उस ऐतिहासिक सफर से पहले कहा.
He said even God can never sink the ship.
उसने कहा परमेश्वर भी इस जहाज को डुबा नहीं सकता.
Now I don't think God sunk that ship. I mean he is not so bad.
मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर का कोई हाथ था उस जहाज को डुबाने में.
But all it required was proud humans who did not receive a message that there's an ice glacier on the way.
सिर्फ कुछ घमंडी लोग थे जो सिग्नल आ रही थी कि आगे बर्फ का पहाड़ है वो संदेश को उन्होंने नहीं देखा.
But the word impossible is all the more painful when we are personally broken and desperate for a miracle.
लेकिन ये जो असंभव शब्द है ये और भी दर्दनाक है जब हमें खुद अपनी जिंदगी में कोई चमत्कार की जरूरत होती है.
Some of us has probably used these statements sometime in your life or used it just this last week.
हमने कभी ना कभी जिंदगी में या फिर पिछले हफ्ते ही इन कुछ कहा बातों को कहा है.
It's impossible for me to get a promotion in this company.
इस कंपनी में मेरी तरक्की नामुमकिन है.
It's impossible for this country to ever change.
इस देश का बदलना नामुमकिन है.
It's impossible I will ever reduce this tummy.
मेरा पेट का वजन घट जाएगा ये असंभव है.
It's impossible for her to come back to me.
वो लड़की मेरी जिंदगी में वापस आ जाए ये असंभव है.
It's impossible for me to kick this bad habit.
ये जो बुरी आदत है मेरी इसे दूर करना मेरे लिए असंभव है.
It's impossible for me to forget what he did to me.
मेरे लिए असंभव है कि मैं भूल जाऊं उसने मुझे क्या किया.
It's impossible for me to get this money in the next 24 hours.
आने वाले 24 घंटे में मुझे ये पैसे मिल जाएंगे ये नामुमकिन है.
Or it's impossible for my sick dad to ever get cured.
मेरे बीमार पिता ठीक हो जाएंगे चंगा हो जाएंगे ये असंभव है.
So this afternoon as we look at a Bible passage, we're going to look at one story that seemed impossible in all aspects.
तो आज जैसे हम वचन की ओर देखेंगे तो एक दृष्टांत है कहानी है जो हर तरीके से असंभव लग रहा था.
It's based on John chapter 4 verse 43 to 54.
योहन्ना का पुस्तक 4 अध्याय 48 से 54.
I'm going to watch this video which summarizes for you what happened in that passage.
इस वीडियो में हम देखेंगे कि तब उस कहानी में क्या हुआ था.
A government official was there whose son was sick in Capernaum. When he heard that Jesus had come from Judea to Galilee, he went to him and asked him to go to Capernaum and heal his son who was about to die.
None of you will ever believe unless you see miracles and wonders.
Sir, come with me. Before my child dies.
Go. Your son will live.
The man believed Jesus' words and went. On his way home, his servants met him with the news.
Your boy is going to live.
He asked them what time it was when his son got better.
It was 1 o'clock yesterday afternoon when the fever left him.
Then the father remembered that it was at that very hour when Jesus had told him.
Your son will live.
So he and all his family believed. This was the second miracle that Jesus performed after coming from Judea to Galilee.
We are going to read this passage in Hindi. I'm going to request Pastor Krishna to read for us John chapter 4, verse 43 to 54.
फिर उन दो दिनों के बाद वो वहां से निकलकर गलील को गया क्योंकि यीशु ने आप ही साक्षी दी कि भविष्यवक्ता अपने देश में आदर नहीं पाता. जब वो गलील में गया तो गलील आनंद के साथ उसे मिले क्योंकि जितने काम उसने यरूशलेम में पर्व के समय किए थे उन्होंने उन सब को देखा था क्योंकि वे भी पर्व में गए थे. तब वो फिर गलील में काना में आया जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था. वहां राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कपर्नहूम में बीमार था. वो ये सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे क्योंकि वो मरने पर था. यीशु ने उससे कहा जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे तब तक कदापि विश्वास न करोगे. राजा के कर्मचारी ने उससे कहा हे प्रभु मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल. यीशु ने उससे कहा जा तेरा पुत्र जीवित है. उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीत की और चला गया. वहाँ मार्ग वो मार्ग में ही था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। उसने उनसे पूछा, किस घड़ी वो अच्छा होने लगा? उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका जोर उतर गया। तब पिता जाना गया कि वो उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी ईश ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है। और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। ये दूसरा आश्चर्य कर्म था जो ईशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया।
थैंक यू पास्टर कृष्णा। आई वांट अस टू लुक एट थ्री थिंग्स, थ्री वर्ड्स आई वांटेड टू रिमेंबर बेस्ड ऑन दिस पैसेज।
हम तीन चीजों को, तीन शब्दों को देखेंगे इस वचन पे बेस्ड।
द फर्स्ट वर्ड आई वांट यू टू रिमेंबर टुडे इज द वर्ड डेस्परेशन।
पहला शब्द है डेस्परेशन, मतलब बेकरार या हताश, किसी चीज की बहुत हद से ज्यादा जरूरत।
Can you tell that to your neighbor? Desperation?
आपके पास जो बैठे हैं उनसे कहे desperation, हताश।
Desperate people do desperate things.
हताश लोग हताश चीजें करते हैं।
I am reminded of a pilot who threatened to crash a plane if his wife left him. That's a very desperate.
एक पायलट था जिसने प्लेन को क्रैश करने की धमकी दी थी अगर उसकी बीवी ने उसे छोड़ दिया।
Desperate people even do sadly cruel things.
कभी कभी ऐसे हताश लोग बहुत निर्दय चीजें भी करते हैं।
Some of us must have read a couple of months ago, a 39-year-old major was arrested for the murder of the wife of another major.
कुछ महीने पहले हमने अखबार में पढ़ा था कि एक 39-year-old का मेजर था आर्मी का, जिसने अपने दोस्त एक और मेजर की पत्नी का कत्ल कर दिया।
The cause of the murder, a mutual friend of the couple, he fell in love with his friend's wife.
कत्ल का वजह यह था कि उसे अपने दोस्त की पत्नी से प्रेम हो गया।
He offered to divorce his own wife and asked the wife of his friend to do the same so that they can get married.
उसने अपनी बीवी को डिवोर्स देने का, तलाक देने का निर्णय लिया और उसने उस औरत से भी कहा कि तुम भी अपने पति को छोड़ दो।
When the friend's wife rejected this offer, he met her on that Saturday, slit her throat with a knife inside his Honda City car, threw her body on the road, ran over her twice to pass off the death as an accident.
जब उस औरत ने इनकार कर दिया तो उन्होंने चाकू से उसका गला काट दिया अपने होंडा सिटी गाड़ी में और फिर उसके शरीर को रस्ते पे डाल फेंक दिया और उसके ऊपर अपनी गाड़ी से कुचल दिया दो बार ताकि ऐसा लगे कि एक्सीडेंट हो गया।
When desperation fails to respect a human life, the results can be very painful.
जब कोई इतना बेकरार होता है कि इंसान की जीवन की भी कोई मूल्य नहीं करता, तब उसका रिजल्ट जो होता है, परिणाम बहुत ही दर्दनाक होता है।
But right here in the story, we have a desperate dad. His son was at the point of death.
लेकिन इस कहानी में हम देखते हैं कि एक बहुत ही बेकरार पिता है जिसका बेटा मरने पे था।
He probably tried everything to get back his son. Medicine, money, magic, everything he failed.
उसने हर एक चीज का को आजमाया था अपने बेटे को ठीक करने के लिए, दवा, पैसे, जादू, सब कुछ, लेकिन सब कुछ नाकामयाब रहा।
But I think his desperation led him to do the wisest thing possible.
लेकिन वो अपनी बेकरारी में सबसे बुद्धिमान काम किया।
We see in this passage that he had heard about Jesus.
हम इस वचन में देखते हैं कि उसने यीशु के बारे में सुना था।
He heard about Jesus that Jesus had done a miracle in Cana. Water turned into wine.
उसको पता था कि यीशु ने कैना में एक बहुत बड़ा चमत्कार किया था, पानी को द्राक्षरस में बदल दिया था।
If Jesus had done a miracle, then maybe, just maybe, he can do a miracle for my son.
अगर यीशु ने कैना में ये चमत्कार किया था, तो शायद वो मेरे जिंदगी में मेरे बेटे के लिए भी ये कर सकते हैं।
This afternoon, I know many of you are here because you have heard about Jesus.
हो सकता है आज दोपहर को आप में से बहुत सारे लोग यहाँ इसलिए हैं क्योंकि आपने यीशु के बारे में सुना है।
A friend told you what Jesus did in his or her life, invited you here. I want to tell you, you are not here by accident. God has a purpose for you.
आपके किसी दोस्त ने शायद आपको कहा होगा कि यीशु ने उनकी जिंदगी में क्या किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ गलती से नहीं आए हैं, आपके जिंदगी में परमेश्वर की एक योजना है।
So in this passage, this man has heard about Jesus. Then the Bible says he went to meet Jesus.
तो इस वचन में लिखा है कि इस आदमी ने यीशु के बारे में सुना था और वो यीशु से मिलने निकल गया।
Now Bible passages are written such a way, sometimes we'll think maybe it's a short walk, a 10-minute walk.
परमेश्वर के वचन में जिस तरह से लिखा हुआ रहता है, कभी कभी हम सोचते हैं कि शायद वो बस 10 मिनट के लिए चल के गया।
It's not a walk from Park Street to Park Circus.
ये Park Street से Park Circus पैदल जाने वाला सफर नहीं है।
Based on this passage, it's probably a 24-hour walk.
इस वचन के अनुसार शायद वो 24 घंटे चल के गया होगा।
24 hour walk just to meet Jesus.
24 ghante chal ke gaya sirf Yeshu se milne ke liye.
He was desperate to meet Jesus.
Wo bilkul hatash tha.
My question this afternoon is, how desperate are you to meet Jesus?
Mera sawal aapse is dopahar ko yahi hai ki aap Yeshu se milne ke liye kitne beqarar hai.
Is it as desperate as just a Uber drive? That's all.
Kya aap sirf ek Uber drive jitne beqarar hain?
The Bible says he heard about Jesus. He came running to meet Jesus. Then the Bible says he begged Jesus.
Bible kehta hai ki usne Yeshu ke bare mein suna, wo daur ke aaya Yeshu se milne aur usne Yeshu se vinti karni shuru kar di.
When in desperation, the wisest thing to do is to run to Jesus.
Jab aap bekarar hai, hatash hai, to sabse buddhiman kaam ye hai, aap Yeshu ke paas daure.
Running to Jesus is usually the last thing most people do.
ज्यादातर लोग इसे सबसे अंतिम विकल्प के अनुसार देखते हैं.
When all our methods are failed, we have done everything, we say, you know what? Maybe I'll try also Jesus.
जब हम सब कुछ आजमा लेते हैं और सब कुछ में असफल रहते हैं, तब हम सोचते हैं शायद यीशु के पास चलें.
But this afternoon, let's get into the habit of going first to Jesus and let him work out things.
लेकिन आज दोपहर को हम इसे अपनी आदत बना लें कि सबसे पहले हम यीशु के पास जाएंगे और उनके हाथों में चीजों को सौंपेंगे.
You know why Jesus is usually the last option for many people?
आपको पता है यीशु सबसे अंतिम विकल्प क्यों होता है ज्यादातर लोगों के लिए?
Because it's usually there's something else which blocks us from coming to Jesus.
क्योंकि अक्सर कुछ बाधा होती है जो हमें यीशु के पास आने से रोकती है.
That brings me to my second word I want us to remember this afternoon.
उससे मैं दूसरे शब्द में पहुंचता हूँ आज दोपहर जो मैं आपको बताने वाला हूँ.
What is the first word?
पहला शब्द क्या है?
Excellent. The second word is the word humility.
दूसरा शब्द है नम्रता.
What's the word?
क्या है शब्द?
Excellent. Humility.
नम्रता.
We live in a very interesting world.
हम बड़े दिलचस्प दुनिया में रहते हैं.
We got some really proud people who flaunt their pride.
कुछ बहुत ही घमंडी लोग हैं जो अपने घमंड का दिखावा करते हैं.
And feel, being humble is the weakness of the meek.
और उन्हें लगता है कि नम्रता कमजोर लोगों की कमजोरी है.
Some of us may have heard the story, reminded of the world boxing champion Muhammad Ali. His tagline was, "I am the greatest."
आप में से कुछ लोगों ने शायद ये कहानी सुनी होगी. मोहम्मद अली पृथ्वी के एक बहुत नामी बॉक्सर थे. उनका टैगलाइन था, मैं सबसे महान हूँ.
Well, once he was on a flight. The flight is about to take off. He did not put on his seat belt. The stewardess reminded Ali to fasten a seat belt.
एक बार वो हवाई जहाज पे थे और एयर होस्टेस ने उनसे कहा कि कुर्सी की पेटी बांध ले क्योंकि उन्होंने नहीं बांधी थी.
मोहम्मद अली सेड सुपरमैन डोंट नीड नो सीट बेल्ट.
मोहम्मद अली ने कहा सुपरमैन को कुर्सी की पेटी की जरूरत नहीं है.
बट अ स्मार्ट एयर होस्टेस शी सेड सुपरमैन डजंट नीड एनी प्लेन आइदर.
वो बड़ी चालाक एयर होस्टेस थी. उसने कहा कि सुपरमैन को हवाई जहाज की भी जरूरत नहीं है.
We got some really proud people who walk around showing, you know what, how humble I am.
कुछ बहुत ही घमंडी लोग होते हैं जो चल फिरते हैं ऐसे जैसे कि वो बहुत ही नम्र हैं.
Here we have in this passage an extremely influential, rich, powerful leader who comes before Jesus.
इस वचन में हम सुनते हैं कि एक ऐसा आदमी है जो बहुत ही अमीर और धनी है जो यीशु के पास आता है.
In the passage, if you see, he comes to Jesus, pleads with Jesus, "Jesus, come home, heal my sick son."
इस वचन में हम देखते हैं कि वो यीशु के पास आता है, विनती करता है, भीख मांगता है कि यीशु मेरे साथ मेरे घर चल और मेरे बेटे को ठीक कर दे.
Basically, what he's saying, Jesus, I'm helpless to handle this. I need you to handle it.
Basically, वो ये कह रहा है कि मैं बिल्कुल ही बेबस हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत है इसको संभालने में.
True humility admits helplessness.
सच्ची नम्रता अपनी बेबसी का शिकार करता है.
Pride often stops people from admitting these three painful words. You know what are these words? It simply says, "I need help."
घमंड अक्सर हमें रोकता है इन तीन शब्दों से कहने से. वो है, "I need help." मुझे मदद चाहिए.
Very difficult to use these words because when you say, "I need help," that means you are weak.
बहुत मुश्किल है इन तीन शब्दों को कहना क्योंकि जब हम कहते हैं मुझे मदद चाहिए मतलब मैं कमजोर हूँ.
Imagine such a beautiful world it would be. If people went around saying, "I need help."
सोचिए दुनिया कितनी खूबसूरत होती अगर सब कोई ये कहते कि मुझे मदद चाहिए.
It would change the world.
दुनिया बदल जाती.
But we live in a world that feels to admit you need help is to degrade your position.
लेकिन हम ऐसे दुनिया में रहते हैं जहां लोग सोचते हैं अगर मैं कहूं कि मुझे मदद चाहिए तो मैं अपने पद से नीचे उतर आऊंगा.
Some of the greatest leaders I have worked with or have seen, the first word they admit is, I need help.
कुछ बहुत ही बड़े अगुवाई है जिनके साथ मैं काम किया हूं या मैंने उन्हें देखा है, सबसे पहले शब्द वो जो कहते हैं वो है मुझे मदद चाहिए.
Okay, I want you to do this experiment for me this week.
मैं चाहता हूं कि आप ये एक्सपेरिमेंट करें इस हफ्ते.
When you feel helpless to handle something,
जब आपको लगे कि आप बेबस हैं और किसी चीज को संभाल नहीं सक रहे हैं,
डोंट बी शाय, जस्ट कॉल दैट पर्सन समवन एंड से यू नो व्हाट, आई नीड हेल्प दिस वीक.
आप डरे ना, आप फोन उठा के किसी से कहे कि मुझे मदद चाहिए इस हफ्ते.
कैन यू डू दैट?
क्या आप वो कर सकते हैं?
सिंपल थ्री वर्ड्स, इट विल चेंज यू, इट विल चेंज योर फ्रेंड्स.
बहुत तीन साधारण शब्द है, वो आपको भी बदल देगा, आपके दोस्तों को भी बदल देगा.
द रिच मैन कम्स टू जीसस एंड ही एडमिट्स, जीसस आई कैन नॉट फिगर दिस आउट, कैन यू प्लीज कम एंड हैंडल दिस.
ये जो धनी आदमी था ये यीशु के पास आता और कहता है प्रभु मैं इसे नहीं संभाल सकता, आप प्लीज आए और कुछ करिए.
When you can't handle it, the best thing you can do is to hand it over to Jesus.
जब आप किसी चीज को संभाल नहीं सकते तो सबसे अच्छी बात ये है आप उसे यीशु पे सौंप दें.
Jesus' response in this passage is the most interesting, and some of us, sometimes people get confused. Why did Jesus say that?
यीशु का जो उत्तर था इस वचन में वो बहुत ही दिलचस्प है और कभी कभी हम सोचते हैं कि यीशु ने ऐसा क्यों कहा.
It seemed that Jesus is not interested in doing the miracle.
इसमें लगता है जैसे यीशु को कोई दिलचस्पी नहीं है इस चमत्कार करने में.
Let's read this verse together, John 4:48 and 49.
यूहन्ना 4:48 और 49 को एक साथ पढ़े.
This man has come 24 hours travel. He's come for a miracle, and this is Jesus's response.
ये आदमी जो है 24 घंटे चल के आया है यीशु के पास और यीशु का ये जवाब है.
Unless you people see signs and wonders, Jesus told him, you will never believe.
जब तक तुम चमत्कार और अद्भुत कार्य नहीं देखते हो तुम कभी विश्वास नहीं करोगे.
It's as if Jesus doesn't want to do the miracle.
ऐसा लगता है जैसे यीशु को ये चमत्कार करना ही नहीं है.
But you know what? If you really understand what Jesus was saying here in this passage, this is what Jesus meant.
लेकिन अगर आप समझे सही तरीके से यीशु ये कहने की कोशिश कर रहे हैं.
Jesus saying is, I am not just interested in being a magician in your life.
यीशु कह रहे हैं मैं तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ जादूगर नहीं बनना चाहता.
I just don't want to make you happy.
मैं सिर्फ तुम्हें खुश नहीं करना चाहता.
Jesus wanted this guy to know doing a miracle is no big deal.
यीशु चाहता था कि ये पिता समझे कि कोई अद्भुत कार्य करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है.
But I rather want you to know who am I and what am I here for.
लेकिन वो चाहते थे कि वो पिता समझे कि वो कौन है और वो इस पृथ्वी में क्यों आए थे.
Some of us, if you didn't understand what I just said, this may help. What is this?
ये क्या है?
From a distance, its branding is good. The Kit Kat.
ये Kit Kat chocolate है.
Imagine. From the day my son was born.
सोचिए जिस दिन से मेरा बेटा पैदा हुआ.
Imagine if I give him Kit Kat once a week.
सोचिए अगर मैं हफ्ते में एक बार उसे Kit Kat देता.
One Kit Kat, second Kit Kat, every week, once a week.
हर हफ्ते एक बार मैं उसे Kit Kat देता.
That means in a year, 52 Kit Kats.
तो एक साल में 52 Kit Kats मिल जाते उसे.
By the time he turns 10, he would have had 520 Kit Kats.
जब तक वो 10 साल की उम्र का हो जाता 520 किटकैट्स खा गया होता.
Imagine if somebody came to my son after he turned 10 years old and asked him, who is this man who is giving you Kit Kat?
मान लीजिए जब मेरा बेटा 10 साल का हो जाए कोई उससे आके पूछे ये आदमी कौन है जो तुम्हें हर हफ्ते Kit Kat देता है.
Imagine if my son said, listen to this carefully, oh, he is the Kit Kat man.
सोचिए अगर मेरा बेटा कहता कि वो Kit Kat वाला है.
What would you think I would feel at that moment?
आपको क्या लगता है मुझे कैसा महसूस होता?
520 Kit Kats later, all that I'm known is as a Kit Kat man.
520 Kit Kat देने के बाद मेरा बेटा मुझे सिर्फ Kit Kat वाला के रूप में देखता है.
I would rather be known as his dad than just being a Kit Kat man.
मैं उसकी जिंदगी में उसके पिता के रूप में जाना जाना चाहता हूँ, ना कि Kit Kat वाले के रूप में.
I know the miracle you need in your life is bigger than a Kit Kat.
मुझे पता है आपकी जिंदगी में जो चमत्कार आपको चाहिए वो Kit Kat से बड़ा है.
And even more important than just a Kit Kat.
और Kit Kat से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है.
But what I want you to understand is this: after all the miracles Jesus does for you, hundreds and hundreds of miracles.
लेकिन मैं चाहता हूँ आप समझे कि आपकी ज़िंदगी में यीशु हज़ारों हज़ारों आश्चर्य काम जो करते हैं उसके बाद.
After that, if somebody asks who is Jesus.
उसके बाद अगर कोई आपसे पूछे यीशु कौन है.
If you say, you know what, he is a magician.
अगर आप कहे आपको पता है वो एक जादूगर है.
He is a miracle worker.
वो एक चमत्कार करने वाला है.
Jesus would quite be disappointed because he wants to be more than that. He wants to be your savior and lord.
यीशु बहुत निराश हो जाते हैं क्योंकि वो आपके उद्धारकर्ता और आपके प्रभु होना चाहते हैं.
That's why in that passage Jesus said, unless you people see signs and wonders, you will never believe.
इसलिए उस वचन में यीशु कहते हैं कि जब तक तुम आश्चर्य काम और चमत्कार नहीं देखोगे तुम विश्वास नहीं करोगे.
But that rich man sees through what Jesus was trying to say, and this is what the rich man said, sir. Everyone say it together, sir, please come home before my child dies.
तो वो अमीर आदमी कहता है क्योंकि वो समझ जाता है कि यीशु क्या कहने की कोशिश करता है और वो कहता है कि सर आप प्लीज मेरे साथ मेरे घर चले इससे पहले कि मेरा बेटा मर जाए.
It's a beautiful sentence. You know what this guy said? He says, sir, sir, let's say it together, sir.
वो कहता है सर
please come down before my child dies.
मेरे बेटे की मृत्यु से पहले आप मेरे साथ चले.
Have you ever faced a moment when you meet a person you are not sure what to call that person?
आपकी जिंदगी में ऐसा कोई पल आया है जब आप किसी से मिले हो और आपको पता नहीं कि आप उसे किस नाम से संबोधित करें?
You are not sure whether to call uncle, auntie, brother, boss, Mr., Mrs., doctor, sister, bhai, and you call up something wrong.
आपको पता नहीं उन्हें अंकल आंटी भाई बहन बॉस सर डॉक्टर क्या बुलाए और आप कुछ गलत कह देते हैं.
Have you faced such things?
आपके साथ ऐसा कभी हुआ है?
It's just me. I have those experiences.
या सिर्फ हमारे साथ ही हुआ है?
Happens to me quite a few times.
मेरे साथ कई बार हुआ है.
So I'm very careful to know what to call.
तो मैं बहुत संभल के लोगों को किसी चीज किसी नाम से बुलाता
हूं. I have an app which helps me decide what to call. No, just joking.
मेरे पास एक ऐप है जिससे पता चलता है किसको क्या नाम से बुलाना
है. Like because once an auntie, I called someone auntie. Auntie said, no, I'm not your auntie. Call me sister.
मैंने एक बार किसी औरत को आंटी बुलाया था. उन्होंने घूम के मुझसे कहा कि मैं आंटी नहीं बहन हूँ.
About several years ago, I mean, maybe when I was a teenager, I called someone by name.
जब मैं युवक था कई साल पहले तब मैंने किसी को नाम से बुलाया था.
Because I thought I'm very pally with that person. I'm quite friendly with that person.
क्योंकि मुझे लगा कि हम दोनों दोस्त जैसे हैं इसलिए.
He took me aside. I am not your friend. Please call me brother.
उसने मुझे कोने में ले जाके कहा मैं तुम्हारा दोस्त नहीं मुझे भाई या भैया कह के संबोधित कर.
This guy, I guess, was not sure what to call Jesus.
इस आदमी को इस पिता को भी पता नहीं था कि यीशु को किस नाम से बुलाए.
But with deep respect, he says, sir. Come down before my child dies.
लेकिन उन्होंने बहुत आदर के साथ कहा कि प्लीज मेरे साथ चले इससे पहले कि मेरी बेटी की मौत हो.
Jesus's response gives us the title to what I'm sharing this morning.
यीशु की जो प्रतिक्रिया है उसी से आज का ये जो विषय है उसका नाम मिलता है.
The talk I call it as long distance miracle.
इसे मैं बुलाना चाहूंगा लंबी दूरी वाला चमत्कार.
What is it?
क्या कहते हैं?
Long distance miracle.
लंबी दूरी का चमत्कार.
Jesus turns to this rich man and tells him, "Go, your son will live."
यीशु इस अमीर आदमी की तरफ मुड़के कहता है, "जाओ तुम्हारा बेटा जिएगा."
Wow, go, your son will live.
जाओ तुम्हारा बेटा जिएगा.
I have no clue why Jesus did not go with the rich man.
मुझे पता नहीं कि यीशु उस अमीर आदमी के साथ क्यों नहीं गया.
Jesus did not want to travel by a horse.
हो सकता है यीशु घोड़े पे नहीं चलना चाहते थे.
He did not want to take a 24-hour walk.
हो सकता है वो 24 घंटे चलना नहीं चाहते थे.
Or most probably he wanted to show this man that the miracle doesn't depend on a physical presence of Jesus.
या हो सकता है इस व्यक्ति को दिखाना चाहते थे कि यीशु की शारीरिक उपस्थिति की जरूरत नहीं है उनकी चमत्कार होने के लिए.
It can happen by just believing my words.
उनके लफ्जों में विश्वास करने से भी चमत्कार हो सकता है.
But I love the response of the rich man.
लेकिन ये जो अमीर आदमी था उसकी जो प्रतीति थी प्रतिक्रिया था वो बहुत अच्छा लगा.
He did not argue with Jesus.
उसने कोई बहस नहीं की यीशु के साथ.
He did not debate with Jesus.
उनके साथ तर्क वितर्क नहीं किया.
He didn't tell him, you know what, I have come all the way here. So many horses have traveled with me and you cannot come back with me. Don't you know who I am?
उसने ऐसा नहीं कहा यीशु से कि मैं इतनी दूर इतने सारे घोड़े लेके आया हूं और तुम मेरे साथ वापस नहीं जा सकते तुम जानते नहीं मैं कौन हूं.
Bible shows us he simply obeyed.
वचन दिखाता है कि उसने आज्ञा का पालन किया.
Here we discover something else about true humility.
सच्ची नम्रता के बारे में हमें इसमें कुछ और भी पता चलता है.
Listen to this, this is very powerful. Choosing to obey even when we don't understand everything.
जब हम सब कुछ नहीं समझते तभी भी हम आज्ञा का पालन करते हैं.
Choosing to obey even when you don't understand everything.
जब सब कुछ समझ में नहीं आता है तभी भी हम आज्ञा का पालन करना चूज करते हैं.
We live in a time where people make the statement, don't we need to know the reason why?
हम ऐसे युग में रहते हैं जब लोग कहते हैं जानना क्या जरूरी नहीं है कि क्यों?
Have you ever asked this question? I need to know why I need to do it.
आपने कभी ये सवाल पूछा है मुझे जानना जरूरी है कि ये करना क्यों जरूरी है?
I feel if you choose to ask God why, be ready to hear His why not.
अगर आप कभी परमेश्वर से पूछने के लिए पूछना चाहते हैं कि क्यों, तो आप रेडी रहिए कि परमेश्वर आपसे कहेंगे क्यों नहीं.
This can apply to our parents, bosses, managers. We may sometimes they may not explain for you why they want you to do something.
ये हमारे सिर्फ परमेश्वर के साथ नहीं लेकिन हमारे माता पिता बॉस सबके साथ लागू होते हैं. वो आपको शायद नहीं समझाएंगे कि वो क्यों चाहते हैं कि आप ये काम करें.
But like the rich man, Jesus said, true humility comes to God, comes to people, chooses to say, you know what, I will do it even when I don't understand it.
लेकिन सच्ची नम्रता ये है वो उस धनी व्यक्ति की तरह कि जब हम नहीं समझते हैं और नहीं जानते तभी भी हम आज्ञा का पालन करते हैं.
First word is desperation.
पहला शब्द है desperation, हताश.
Second word.
दूसरा शब्द.
Excellent. Third word I want us to remember is the word timing.
तीसरा वक्त है समय.
What's the word?
क्या है वक्त?
So
word.
What's the first word?
पहला शब्द.
Desperation. Second word.
दूसरा शब्द.
Third word.
तीसरा.
Excellent. Talking about timing, I am reminded. Some of my young people here will remember. I've shared this before. I'm reminded of my school history exam.
समय की जब बात करते हैं तो मुझे अपनी स्कूल की इतिहास की एग्जाम की बात याद आती है.
I was getting this is my class 10 board exam.
मैं अपनी क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम देने वाला था.
I was not a very good student but I thought I'm very good in history.
मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था लेकिन मुझे लगता था मैं इतिहास में बहुत अच्छा हूं.
I thought I'm desperate to get above 90 in history.
मुझे हिस्ट्री में 90% से ज्यादा मार्क्स चाहिए.
How many of you are good students of history?
आप में से कितने स्टूडेंट्स इतिहास में बहुत अच्छे हैं?
How many of you think you are historic? I don't care.
आपको लगता है आप खुद ही इतिहास हैं?
So I had prepared well for this exam and I'm standing in line to enter the exam hall just 45 seconds from the exam hall.
तो मैंने अच्छी से तैयारी की थी एग्जाम के लिए और मैं हॉल में अंदर जाने से पहले 45 seconds बाकी थे, मैं बाहर खड़ा था.
Class 10 exam those years, I don't know how it's now. In that exam usually they have two pictures of some architectural structure around India.
अभी एग्जाम कैसे होते हैं मुझे पता नहीं लेकिन तब हमारे पेपर में दो ऐतिहासिक इमारत की तस्वीर होती थी और पेपर में लिखना पड़ता था.
And the questions would be tell us who, what is it, where is it, etc.
और सवाल ऐसे होते थे कि उसे पहचानो, वो कहाँ है, क्या है, उसके बारे में लिखो.
And standing in line, I didn't know what I needed to talk. I just casually asked my classmate, what do you think will come for the exam?
और मैं लाइन में जब खड़ा था मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या बात करूं, तो मैंने बस अपने क्लासमेट से पूछा कि तुम्हें क्या लगता है एग्जाम में क्या आएगा.
45 seconds, remember, that's the time.
45 सेकंड बाकी है एग्जाम हॉल में अंदर आने के लिए.
And he said, gold gumbas will come. See, 20 years, 24 years ago, I still remember this. Gold gumbas.
24 साल पहले की बात है लेकिन मुझे याद है उसने कहा गोल गुम्बस आएगा.
Where is gold gumbas? Anyone knows? I can't
किसी
remember.
को पता है गोल गुम्बस कहां है?
Egypt, someone said? No, it's in India. Bijapur, okay, I can't remember now. But I remember the gold gumbas because of the exact humor of the whole thing.
मुझे गोल गुम्बस इसी वजह से याद है क्योंकि उसमें जो हंसी वाली बात है उसी के वजह से याद है.
So gold gumbas is the only architecture I did not study because I thought that it came one or two years ago, it won't come.
तो गोल गुम्बस के बारे में मैंने नहीं पढ़ा था क्योंकि वो एक दो साल पहले एग्जाम में आया था, मुझे लगा वो नहीं आएगा.
So I thought my classmate is joking. He said, अच्छा आएगा, really it will come. Tell me what is it?
तो मैंने अपने जो क्लासमेट थे उससे बस सोचा कि वो मजाक कर रहा है और मैंने पूछा अच्छा बताओ उसके बारे में वो क्या है.
So he told me a few details and I walked into the exam hall.
तो उसने कुछ विवरण बताया और मैं एग्जाम हॉल के अंदर चले गया.
And when I get my exam paper, gold gumbas staring at my face.
और जब मुझे एग्जाम का पेपर मिला उसमें गोल गुम्बस पे प्रश्न थे.
Timing is most important for most things in life.
जिंदगी में ज्यादातर चीजों के लिए समय बहुत महत्वपूर्ण होता है.
I love this famous familiar quote.
एक बहुत ही मशहूर कहावत है, मुझे पसंद है.
If you want to know the value of one year, just ask a student who failed a course.
एक साल की कीमत अगर आपको जाननी हो तो ऐसे स्टूडेंट से पूछे जो फेल हो गया है.
If you want to know the value of one month, ask a mother who gave birth to a premature baby.
एक महीने की वैल्यू कीमत अगर आपको जाननी है तो आप ऐसे माँ से पूछे जो एक महीने पहले अपने बच्चे को जन्म दे चुकी.
If you want to know the value of one hour, ask the lovers waiting to meet.
एक घंटे की समय की कीमत क्या होती है आप ऐसे प्रेमी से पूछें जो मिलने के लिए बेकरार है.
If you want to know the value of 1 minute, ask the person who just missed the bus.
एक मिनट की क्या कीमत होती है जानने के लिए आप उस इंसान से पूछें जिसका बस छूट गया.
If you want to know the value of 1 second, ask the person who just escaped death in a car accident.
एक सेकंड की क्या कीमत होती है आप उससे पूछें जो कार एक्सीडेंट से एक सेकंड से बच गया.
If you want to know the value of 1/100th of a second, ask the athlete who got a silver medal in the Olympics.
अगर आप एक सेकंड के 100वें को भी जानना चाहते हैं उसकी कीमत तो आप ऐसे खिलाड़ी से पूछें जो खेल के मैदान में दौड़ता है और उसे एक सेकंड 1/100th of a second की वजह से सिल्वर मेडल मिल गया.
In this story we see how Jesus works out his timing.
इस कहानी में हम देखते हैं कि यीशु कैसे अपने समय को वर्कआउट करते हैं.
Look at this passage. Go, Jesus replied, your son will live. The man took Jesus at his word and departed. While he was still on the way, his servants met him with the news that his boy was living. When the rich man inquired as to the time, when did it happen? He said, yesterday at 1 in the afternoon, the fever left him. Father realized this was the exact time. Everyone say exact time. At which Jesus had said to him, your son will live. So he and his whole household believed.
यीशु ने उसके पिता से कहा जाओ तुम्हारा बेटा जिएगा. यीशु की बातें सुन के उसने विश्वास की और वो वहां से चले गया. जैसे वो जा रहा था रस्ते पे उसके कुछ दास आए उससे मिलने और उससे कहा कि तुम्हारा बेटे का बुखार छूट गया है. तो उसने पूछा कि ये कब हुआ और फिर उसने कहा कल दोपहर को 1 बजे. फिर उसे याद आया कि वो उसी समय था जब यीशु ने कहा था कि तुम्हारा बेटा जिएगा. उसके बाद उसे विश्वास हुआ.
The basic thing I want you to remember this afternoon is this: Jesus is never late; he's always on time.
मूल बात ये है जो मैं चाहता हूँ कि आप याद रखें. यीशु कभी देर से नहीं आते. वो हमेशा वक्त पे है.
Never 1 second early, never 1 second late.
एक सेकंड लेट भी नहीं, एक सेकंड जल्दी भी नहीं.
It's also important to know that Jesus doesn't follow your clock.
ये भी जानना जरूरी है कि यीशु आपके घड़ी के अनुसार नहीं चलते.
Your clock wants a miracle at your convenience.
आपकी जो जिंदगी की घड़ी है वो आपके समय के अनुसार एक चमत्कार चाहता है.
But God does miracles for you based on when he thinks it's needed most.
लेकिन परमेश्वर आपकी जिंदगी में तब चमत्कार करता है जब उन्हें लगता है कि ये तब जरूरी है.
The key thing is for us to put our trust in him.
मूल बात ये है कि हम उनमें विश्वास करें.
But the biggest thing probably of this message I want you to take from here is this: Jesus, listen to this carefully, Jesus is never far away. Regardless of how far it is, there's never a long distance with Jesus. You'll always land up wherever you need him.
मैं चाहता हूं कि आप ये बात को समझे कि यीशु हमसे कभी भी दूर नहीं है. इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि वो कितने दूर आपको आप कितने दूर है, लेकिन यीशु हमेशा वहीं पहुंच जाते हैं जहां आपको उनकी जरूरत है.
24 hours
is
not a long distance for Jesus.
बहुत लंबी दूरी नहीं है यीशु के लिए.
It can be 24 kilometers, it's not a long distance for Jesus.
24 किलोमीटर यीशु के लिए बहुत लंबी दूरी नहीं है.
It can be across 24 countries, it's not a long distance for Jesus.
24 देशों को भी अगर पार करना पड़े यीशु के लिए ये दूर नहीं है.
Because Jesus specializes in long distance miracles.
क्योंकि यीशु की यही अच्छी बात है कि वो लंबी दूरी वाले जो चमत्कार है बहुत विशेष तरीके से करते हैं.
Long distance can be because of time. Long distance can be because of physical distance.
लंबी दूरी वक्त की वजह से भी हो सकती है या फिर शारीरिक दूरी की वजह से भी हो सकती है.
But Jesus specializes in long distance miracles.
लेकिन यीशु की यही अच्छी बात है कि वो लंबी दूरी वाले चमत्कार में विशेष काम करते हैं.
Bible tells us Lazarus was already dead for 4 days. Jesus goes to his tomb and wakes him out of the tomb.
वचन कहता है कि लाजर 4 दिनों के लिए मर गया था और कब्र में था. 4 दिन बाद यीशु आते हैं और उन्हें जिंदा करते हैं.
Acts chapter 4, Peter and John are arrested, group of believers sitting at home and praying, and then a prison break happens.
प्रेरित की पुस्तक 4 में लिखा हुआ है कि पीटर की गिरफ्तारी हो गई थी और घर में बैठ के बाकी जो चेले थे वो विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे थे और उन और एक चमत्कार होता है.
Among our pastors, the other day we were sharing, few weeks ago, a child, a 6-year-old child went missing.
कुछ हफ्ते पहले हम पास्टर बात कर रहे थे कि एक 6 साल का बच्चा गायब हो गया था, मिसिंग था.
As a church prayer team prayed, within a few hours, this missing child was found.
जैसे हमारी चर्च की पूरी टीम प्रार्थना कर रही थी, ये जो बच्चा गुमशुदा था, वो पाया गया.
So when we are praying, when we look to Jesus, Jesus does do miracles.
जब हम प्रार्थना करते हैं और यीशु की ओर देखते हैं, यीशु चमत्कार जरूर करते हैं.
Today I don't know the miracle you need in your life.
Mujhe pata nahi aaj aapko apki zindagi mein kaun sa chamatkar chahiye.
If I pass this mic around and ask what is the miracle you desperately need.
Agar main ye mic aap sabko du aur aapse puchu ki aapko wo kaun si chamatkar ki behad zarurat hai.
I'm sure each of you will honestly share different miracles you need in your life.
Mujhe pata hai aap mein se har ek koi na koi chamatkar ke bare mein baat karenge jiski aapko behad zarurat hai.
Your miracle today might be for finance.
Ho sakta hai aapko aarthik samasya mein chamatkar chahiye.
Maybe for a family member who is sick.
Kisi parivar ke sadasya ke liye jo bahut bimar hai.
Maybe for college admissions.
Ho sakta hai college ke admission ke liye aapko chamatkar chahiye.
Maybe for a habit you cannot get rid of.
Ho sakta hai koi buri aadat jisse aapko chutkara nahi mil raha hai.
All of these miracles may be outside your power and your GPS tracking ability.
हो सकता है ये सारे चमत्कार आपके सामर्थ्य और आपके GPS ट्रैकिंग एबिलिटी से बाहर है.
And sometimes it's really impossible seems. We know we have a young person. She's moved off to Calcutta. I mean, quite young. Got recently married. Struggling with stage 2 cancer.
और कभी-कभी असंभव लगता है एक नौजवान एक युवती है जो अभी-अभी कलकत्ता से बाहर शिफ्ट हुई है. उसे स्टेज 2 कैंसर हुआ है. अभी उसकी शादी भी हुई है.
And when you face situations like this, it's real, really difficult. And we come to this passage and we realize if we are desperate, if we are humble, and we come to a point where we say, Lord, I trust you for your timing.
और कभी-कभी ऐसा होता है कि ऐसे असंभव सिचुएशंस हमारी जिंदगी में आते हैं लेकिन जैसे हम इस वचन में पढ़ते हैं अगर आप बहुत ही हताश है और अगर आप परमेश्वर की टाइमिंग में समय में विश्वास करते हैं और अगर आप नम्र है
we are going to, I know, each of us have a miracle we need in our lives.
हम में से हर एक को एक चमत्कार की जरूरत है हमारी जिंदगी में.
And you are seated here and you're saying, you know what, I believe in miracles. I need a miracle in my life.
हो सकता है आप यहां बैठे और आप कह रहे हैं कि मैं चमत्कारों में विश्वास करता हूं, मुझे चमत्कार की जरूरत है.
But like he told the rich man, Jesus doesn't want to be a KitKat God in your life.
लेकिन जैसे उसने उस धनी व्यक्ति से कहा, यीशु आपकी जिंदगी में किटकैट वाले की तरह नहीं बनना चाहते.
He wants to be your Lord and Savior.
वो आपके परमेश्वर और उद्धारकर्ता बनना चाहते हैं.
He wants you to follow him.
वो चाहते हैं कि आप उनके अनुयायी बने.
And for that you have to put your trust in him, believe in him.
और उसके लिए आपको अपना विश्वास उसमें देना है, उन पे विश्वास करना है.
This afternoon, just to let you know, Jesus is never late for his appointment with you.
मैं चाहता हूं कि आप इस दोपहर को जाने कि यीशु मसीह अपने अपॉइंटमेंट से कभी देर नहीं आते.
Jesus is never far away.
यीशु कभी दूर नहीं है.
You may think your situation is too far, too difficult. With Jesus, it's never too difficult.
हो सकता है आप सोचे कि आपकी समस्या बहुत देर हो चुकी है या बहुत दूर है, लेकिन यीशु के लिए कुछ देर नहीं, कुछ दूर नहीं.
Thanks for listening to this message from AG Kolkata. We hope you would stay connected by following us online. You can find us on Facebook, Twitter, and Instagram by using @AGCKolkata. We would love to know how this message has touched your life. Please take a moment to share your story by emailing us at stories@agkolkata.org. Hope you have a great week ahead.